भी पढ़ेंगे उतना ही भगवान के चरणों में अनुराग होगा। संसार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, आसक्ति को छोड़ना चाहिए, नहीं तो यही दुख का कारण बन जाता है। दुख का टूका देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। जितने मनुष्य हैं अपने सुख और दुख अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, वो लोग हमको संसार से उद्धार नहीं कर सकेंगे। केवल शुद्ध गुरु, शुद्ध वैष्णव और भगवान ही हमारा बेड़ा पार लगा सकते हैं। इसलिए संसार में गंदा चीज मत खाना, जो कुछ हो सात्विक रूप से भगवान का भोग लगाना, तुलसी देख करके और उनको ग्रहण करना, धूम्रपान इत्यादि से, चोरी झूठ बेईमानी से दूर रह करके भगवान का तुम लोग भजन। विशेष करके आप लोगों के लिए ही वृंदावन में कृष्ण प्रकट हुए, यहाँ पर प्रकट हुए मथुरा में, इसलिए खूब मन लगा करके भजन करना। और अगले बार से कोई रहमत जाना, कोई विशेष कोई परिस्थिति हो तो, और नहीं तो जितना आई है इतना और भी लोगों को लेकर के धीरे 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 आप लोगों का यह समूह बढ़े और सब लोग प्रेम से राधा कृष्ण की सेवा करें एकांतिक चित्त से। एकांतिक चित्त माने क्या? एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए। क्रमशः जो अब तक देवताओं की जो पूजा हो रही थी उनको प्रणाम कर लो दूर से, किंतु हृदय में राधा कृष्ण ही एकमात्र विराजमान रहें इस तरह से। और नहीं तो उस देवता को भी गए, उस देवता के हैं भी गए, उस देवता के हैं, ऐसा नहीं। समस्त देखो ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण की कृष्ण ने ही, शंकर जी राम की ही या कृष्ण की आराधना करते हैं गोपीश्वर के रूप में। जितने देवता हैं सभी लोग उन्हीं से शक्ति पाते हैं, इसलिए पृथक रूप में जो राधा कृष्ण का भजन करता है या करती है उसके लिए पृथक रूप में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उनको प्रणाम करके कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में भक्ति मांगना चाहिए। इस प्रकार से रहते हुए अपना भजन करें। प्रति एकादशी को आप लोग आइए, एकादशी भी पालन बच्चे से भी आरंभ करके बूढ़े तक सभी लोग एकादशी का पालन करें। इस तरह से सहज रूप में भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। अब आप लोग जा सकते हैं। गौ प्रमाणं वे हरि, आप बोलिए।
Okay.
चक्रूरुमिदं येन तस्मै कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंहभ्यै पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदादये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के 10 नियमों को बतला रहे थे। कैसे भजन करना चाहिए। साधारण रूप में लोग अशांत चित्त से चित्त स्थिर नहीं कर और मनमानी तरीके से भजन करते हैं, और कुछ लोग जैसा गुरु वैष्णव लोग बतलाते हैं वैसा भजन करते हैं। तो भजन करने के लिए कुछ निश्चित नियम है, उन नियमों को पालन करना चाहिए, चाहे वैदिक भक्ति हो चाहे रागान हो। कल हमने बतलाया था कि ब्रज में ही हम रहेंगे, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी है, नंदगांव है, बरसाना है, या और ब्रज के स्थान है यहाँ पर कृष्ण की लीला हैं, विशेष विशेष करके उनकी लीला की जगहें हैं। वहीं रह करके एक मिनट भी हम ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे, जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा की। एक त्रुटि काल निमेश काल भी हम ब्रज से बाहर नहीं रहेंगे। जैसे हरिभजन करेंगे इसका संकल्प है, वैसे धाम वास का भी संकल्प है। यदि मैंने सुना जब कृष्ण द्वारका गए हैं और उन्होंने उद्धव जी को भेजा, जे जाओ उसको बुला लाओ मेरे पास में, मैं उसके लिए बहुत गिरह में तड़प रहा हूँ, जाओ उसको ले करके साथ में आना, और उद्धव जी आए और समझाया बुझाया, तो जाना चाहिए कि नहीं। भगवान बुला रहे हैं और उद्धव जी आए हैं बुलाने के लिए, फिर तो जाना ही उचित है। कहें हाँ जाना उचित है और सब लोगों को जाना भी चाहिए, किंतु मैं नहीं जाऊँगा। सब लोग जाएं और जाना उचित है, जब उद्धव आए हैं कृष्ण भी बुलाएं तो जरूर जाओ, तुम लोगों को जाना चाहिए, किंतु मैं नहीं जा रहा किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर हम नहीं जा सकते हैं, ये कल हमने बतलाया। इसके लिए एक छोटी सी कथा है। यहीं पर कोई गांव है, गांव का नाम याद नहीं, उनका कोई एक महात्मा जी थे, उनका भी उत्सव होता है, वही गांव में रह करके बरसाना और गोवर्धन के रास्ते में कहीं वो गांव है सुनहरा कदमखंड के पास, वो लोग सब जानती हैं। कौन सा गांव? धनबाड़ी। हाँ धनबाड़ी वो स्थान है। तो वो राधा कुंड के एक बाबा जी थे, उनसे उनकी बड़ी सख्य भाव था और दोनों भावाविष्ट होकर के भजन करते थे, अष्टकाली लीला का चिंतन भी करते थे। लीला दो तरह से स्मरण होता है, एक तो अपनी चेष्टा से एक करते हैं भजन, अपनी चेष्टा से कुछ लोग करते हैं, और कुछ होता है अपने आप होने लगता है नाम। हम अभी अपनी जीवा से कहते हैं अब हरिनाम करना चाहिए कर, और एक अवस्था ऐसी है जो अपने आप तुम्हारी इच्छा नहीं रहने पर भी अपने आप नाम जीवा पर होने लगता है, दूसरा वाला शेष है। ऐसे ही हम भजन करते हैं या अपनी चेष्टा से, और एक होता है अपने आप वो लीला या वो भजन अपने आप हृदय में उदित हो जाता है, उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, किंतु वो होगा अनर्थ निवृत्ति के पश्चात, और किसी भक्त की या भगवान की विशेष कृपा हो तो हो। आसक्ति में भी जरा मुश्किल है, तो वो ये होगा जब विशुद्ध सत्व उदित होगा तब, आसक्ति में भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आभास हो। तो ये लोग भजन करते 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 अत्यंत परिपक्व होने जा रहे थे, हठात उनकी इच्छा हुई रणवाले को, बाबा जी को, उम्र भी उनकी बहुत काफी हो गई थी, वृद्ध जरत हो गए थे, इच्छा हुई जी द्वारका एक बार नहीं गया, नहीं कभी जाकर के देखा, फिर कहा जी नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, द्वारका में नहीं गया। किंतु थोड़ी सी इच्छा होते ही यदि भक्तों के हृदय में थोड़ी सी इच्छा हो जाए, नाम करते करते भगवान का भजन करते करते, तो भगवान उस इच्छा को जरूर पूरा करा देते हैं। ध्रुव जी ने चाहा मैं पृथ्वी का राजा बन जाऊं, और जब भगवान ने दर्शन किया तो उनकी दर्शन की लालसा से मिट तो गई वो आशा, जो अब नहीं, किंतु भगवान ने पहले की जो आशा थी उसको पूरा करने के लिए कहा कि 36,000 वर्ष तक राज्य हो। अब तो रोने लगे, कहा ये नहीं अब ऐसा, अब तो भोग करके ही आए, 36,000 वर्ष ऐसे ही चला गया। इसलिए भजन करने के समय में यदि कोई थोड़ी सी भी कामना हृदय में उठती है तो प्रभु उस कामना को पूरा करा करके तब फिर आगे बढ़ाते। इसलिए खबरदार, यदि कोई कामना हो गई उसकी छाप मोहर लग जाएगी मन पर, और प्रभु उसको पूरा कराने में कितना दिन लग जाएगा कोई ठीक नहीं, कितने जन व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए अन्न अभिलाष सबको दूर रखो, कोई आसान मत रखो। ये थोड़ी सी बात लगती है मैं द्वारका में जाऊंगा जरा दबद दर्शन, कौन नहीं करता है, सभी लोग इच्छा करते हैं जाने के लिए, इच्छा की दूसरों के लिए क्षम्य था, क्योंकि इनके लिए क्षम्य नहीं है, क्यों, अब समझ गए हैं, बुझ गए हैं, उपदेश पाए हैं, एक रास्ता इनको मिला है और काफी आगे चले गए, और वहां जाकर के ऐसी इच्छा करना ये ब्रज भाव के विपरीत है। द्वारका का ध्यान, रुक्मिणी का ध्यान, उनकी पूजा और इनके अंदर में आ गई, और उनकी चित्त वृत्ति पर मोहर पड़ गई, छाप पड़ गई। भगवान ने देखा कि इसने सब गड़बड़ कर दी, इसलिए उन्होंने साथ ही साथ में व्यवस्था की है, जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था पूरी करा कर इसका भोग भी करा दें, नहीं तो इसमें जन्म जन्मांतर चले जाएंगे, जैसे शंकर जी का हुआ था ना, शंकर जी ने अपने काकभूषुंडी को अभी संपाद दिया था, लाख जन्म तुम नरक में जाएगा, तो उनके गुरु जी रोने के वजह से सात सात जन्म और मरण होते 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 थे, थोड़े देर में ही उनको भोगा दिया, भोगना पड़ेगा क्यों। तो उन्होंने, भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था की, एक ब्राह्मण को उनके पास में भेज दिया, मैं जा रहा हूँ द्वारका, हमारे साथ चलोगे बाबा जी, घुमा लाएंगे। नहीं भाई, मेरी जाने की इच्छा तो थी किंतु अब नहीं जाए, अब नहीं जाए, और हमारे पास में क्या है, जो मैं जाऊँगा काफ़ी रुपया खर्चा है, उन्हें खर्चा तर्चा हम करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, आपको पकड़ करके ले चलेंगे, और सब प्रकार से आपकी सेवा कर से, बस आप हमारे साथ में चल चलें, फिर अब ये बूढ़ा हो गए हैं, फिर कभी समय मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए चलिए। तो उनके कहने से उन्होंने सोचा कि हमारी इच्छा तो हो गई थी, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई जाने की, अब जाने की इच्छा नहीं, तो वो माने नहीं, जिद करने लगे। वो जिद करने लगे भगवान की इच्छा से, उनको तो भोगाना है, जो आ गया उसको जरूर भोगाएंगे। यदि घाव हो गया है तो उसको चीर फाड़ करके उसका निकालेंगे, इसलिए उनको जिद करने से वो मान गए और द्वारका ले गए उनको घुमा करके। द्वारका जा करके और लौटे, इतने में तो उनको ध्यान इत्यादि स्मरण करने का समय नहीं मिला, किंतु अपने स्थान में लौट आ करके अब स्मरण करने की के लिए बैठे। लीलाओं का जैसे अपने आप स्वाभाविक रूप में स्मरण होता था, स्फूर्ति होती थी, अब लाख चेष्टा कर रहे हैं, एक इंच भी, एक केस भी आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं आ रहे। सारा दिन रात एक दो चार दस बीस दिन बैठे रहे, किंतु कुछ नहीं आया ही नहीं, थोड़ा सा ले आया फिर झट उड़ जाए। जब कुछ दिनों तक नहीं हुआ तो अंत में हार गए। सोचा जे राधा कुंड वाले बाबा जी हमारे मित्र हैं, इनसे मैं जाकर के कुछ कहूँगा, और कहने पर वो शायद हमारी कुछ सहायता कर सकें। ऐसा तो बड़े दुखी होकर के महाराज बोली ले ली। और जब राधा कुंड में आए तो बड़ी सभा उन लोगों की, संतों की बैठी हुई थी, लोग की हरी कथा चल रही थी। कहा जा रहे वो बाबा जी आ रहा है, तो पहले से समझ गए न जाने कैसे, और उनके तरफ में पीठ मोड़ करके और इन लोगों से बातचीत कर। लोग कह रहे हैं जो वो आ रहे हैं, किंतु किसी की बात नहीं सुना, उनके तरफ में देखा नहीं। यदि राधा जी हमारे प्रति ही असंतुष्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, इनका तो गया, अब हमारा भी नहीं गया। इसी तरह से विचार करना चाहिए। गुरु वैष्णव के संबंध में भी भगवत भक्ति के जो अनुकूल है उन्हीं से संबंध रखना चाहिए। भगवत भक्ति से जिनका संबंध नहीं रहा, ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना, चाहे वो लाख हमारे प्रिय हों। तजिए कोटि बैरी सम, उनको छोड़ करके भगवान का भजन निराला, विशेष करके राधानुगा भजन और भी बड़ा भारी और कठिन। वो समझ गए और उनसे बातचीत नहीं किया, सामने आने पर भी बातचीत नहीं किया, उनके तरफ में देखा नहीं, इशारे से समझ गए वो भी तो साधारण थे नहीं। अरे जब राधिका जी ने ही त्याग कर दिया तो इन लोगों की तो बात का, ये तो उनकी सेविका है, ये तो बातचीत करेंगे, इसलिए इनके प्रति द्वेष भाव नहीं आया। बड़े दुखी होकर के लौटते, अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया, छोटी सी जैसे पुरी में उनका गंभीरा है, ऐसा ही कोई थी भजन करने की, उसमें जाकर के बड़े विरह से तड़पने लगे। और तब से हार आधे कहते हुए अपने शरीर में अपने आप आग लग गई और जल करके भस्म हुआ। दूसरे दिन गांव वाले आए, बाबा जी की कोठरी क्यों नहीं खुल रही, बहुत चेष्टा की नहीं खोली, तो अंत में तोड़ दिया। तोड़ करके देखा जैसे वहां पर तो थोड़ा सा राख पड़ा है और बाबा जी को तो। तब फिर वैष्णव को पता लगा, तब फिर आए और उनका उत्सव इत्यादि किया। तब से प्रति वर्ष उनका वहां पर उत्सव वैष्णव लोग मना गए। ये तो उनके लिए भगवान ने साथ ही साथ धन दे करके उनको दूसरे जन्म के लिए ठीक कर दिया, किंतु हम लोगों के लिए अभी ना जाने कहाँ पड़े हुए हैं, बहुत दूर भक्ति राज्य, ये सब जानते भी नहीं है ये सब चीजें। तो बतलाइए, द्वारका जाना कोई बुरी बात नहीं है, रुक्मिणी जी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करते हैं और सब लोगों की पूजा करते हैं, तो रुक्मिणी जी की पूजा करने में क्या सत्य भावना का क्या है, वो तो बड़े उच्च भाव की थी, वो तो राधिका जी का ही स्वरूप है वो, अरे नहीं। इसलिए कहते हैं कि द्वारका में कृष्ण भी जाएंगे और बुलाए भी अपने प्रिय व्यक्तियों के द्वारा, सत्यभामा जी को भी भेज दें, रुक्मिणी को भी भेज दें, ये जाओ उसको बुला लाओ, जहां राधा जी का गंध नहीं है हम नहीं जाएंगे भजन करने, कृष्ण बुलाने पर भी। हठात ये चिंता करने के बाद में उन्होंने विचार किया कि मैंने तो कह दिया कि अब द्वारका कभी जाएंगे ही नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति हो भी सकती है जहां पर हमको जाना पड़े, तो उसके लिए ये बतला रहे। गोतो उन्मादई राधा सुरति हरिना श्लिष्ट हो गया, स्फुटं दारावत्यामिति यदि श्रोणि सृतटे तदाहं तत्रैवाम उद्धत मति पतामि ब्रजपुरा समुद्दीय स्वान्ताधिगति खगेन्द्रादपि जवाब। कहते हैं कि वैसे तो मैं द्वारकापुर कभी नहीं जा सकती, राधा जी जाएंगी तब तो जा सकती हैं, तो राधा जी कभी जाएंगी? राधा जी नहीं जाएंगी, तो हम भी नहीं जाएंगे। किंतु हाँ एक बात है, राधा जी यदि उन्माद ग्रस्त हो गई, राधा जी को उन्माद हो गया, तो उस समय में तो हृदय में शरीर पर किसी चीज का कंट्रोल नहीं रहता। उन्मादग्रस्त अवस्था में यदि चली गई द्वारका कृष्ण के पास में, और उस समय में यदि श्रवण करूं ये राधा जी को उन्माद हो गया और उन्माद अवस्था में वो चली गई, तो मैं खगेंद्र, खगेंद्र माने गरुड़, गरुड़ से भी बड़े वेग से द्वारका में अपनी स्वामी जी के यहां पर पहुंच जाऊंगी। उद्धम उद्धत, उद्धत होकर के, उद्धत माने क्या,
इसमें परवाह नहीं करी,
जैसे वो उद्धत हो गई राधा जी उन्मादग्रस्त होकर के, ऐसे मैं भी उन्मादग्रस्त होकर के राधा जी की सेवा के लिए बिना बुलाए किसी की निमंत्रण की जरूरत नहीं है, अक्रूर और किसी को उद्धव इत्यादि को आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहां पर राधा जी का के प्रति ऐसा संबंध। इसको समझने के लिए प्रश्न हो सकता है, जैसा कि भागवत में वर्णन किया गया है और ललित माधव नाटक में वर्णन किया गया है, श्रीमद्भागवत के अनुसार में श्रीमती राधिका जी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के लिए गई, सूर्य ग्रहण के लिए नहीं गई, कृष्ण से मिलने भी नहीं गई, वो गई हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ क्यों? एक पंथ
दुख,
सूर्य की पूजा करने से कृष्ण मिल जाते हैं, ऐसे ही हमारे आराध्य देव कौन है? सूर्य, आराध्य माने प्रकाश, वही सूर्य की पूजा करने के लिए जा रही है ना वहां सूर्य कुंड में। अब वो सूर्य की पूजा करने के लिए हम जाएंगे कुरुक्षेत्र में, सूर्य का उपराग था ना, इसलिए उस संबंध से बहुत गहरा संबंध है,
भानी सब, भानी सब,
इसलिए वहां पर गई। किस लिए गई? सूर्य की पूजा करने के लिए, वहां पर सूर्य का ये ग्रहण लगा हुआ है, उसमें हमारी जरूर मनोकामना पूर्ण हो। मैं बहुत दुखी वहां गई, वहां पर गई जिस उद्देश्य से, कुछ सफल हुआ, कृष्ण मिले, और वहां पर उन्होंने कहा आने हृदय मोर मन वृंदावन, आने हृदय
मन
मन मोर मन वृंदावन,
मने
बने
करी मानी, कहा तुम्हार पादोदय कराओ यदि उदय तभी तुम्हार पूर्ण पिता मानी।
उन्होंने कहा मैं आ तो गई, आ गई किस लिए? वृंदावन में आपको ले चलने के लिए आई, और लोगों का मन मन है और मेरा मन वृंदावन, तो आप सबके मन में रहते हैं, तो कहाँ रहता हूँ, सबके मन में रहता हूँ तो हमारे मन में भी रहिए, हमारा मन ही तो वृंदावन है, इसलिए वृंदावन में यदि आप चरणों को यदि पहुंचे तब तो हमारा सबका कल्याण, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आप सबके मन में उदित होते हैं, तो वैसे हमारे निर्मल मन में अर्थात वृंदावन में पधारिए। यहाँ पर उसने कहा कि मैं तो यहीं पर मिल तो गया, आपने बेस तो नहीं छोड़ा, आपने अपने बाप को तो छोड़ा नहीं, नंद बाबा को तो पिता बनाया नहीं, यशोदा मैया को अपनी मैया कहा नहीं, अभी तक आपके यहाँ पर सोने का मुकुट, राज मुकुट और ये सब आपके जितने अस्त्र शस्त्र और सेनाएं यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर मिलना हमारा मिलना मन नहीं, इसलिए यदि मिलना हो आप वृंदावन में पधारे। कृष्ण राजी हुए और उन्होंने अपने मनोरथ पर उनको बैठाया और सब गोपियां उन मनोरथ से खेच करके अपने हाथों से अपने मन से
चोरी गोपी मनमथे मनमथेर मनमथे नाम धरे मदन मोहन,
और वहां से फिर वृंदावन में आए और गोपियों को कभी नहीं छोड़ा, अंत तक बने रहे। हम लोगों ने देखा नहीं, सब गोपियों के साथ ही प्रकट लीला को अप्रकट लीला में बदल करके नित्य रूप में वृंदावन में ही पधारे रह गए। दूसरी बार सुनते हैं कि कभी कृष्ण जब यहां से द्वारका चले गए, उनके विरह में गोपियां सब तड़पने लगी। राधा जी तो उस विरह को सह ना सकी और खेलन वन में गई। खेलन वन माने खेलन तीर्थ अर्थात
बिहार वन शेरगढ़ के पास,
शेरगढ़ के पास नहीं, शेरगढ़ ही खेलन वन। वहां पर राधा कृष्ण खेलते थे, वहीं पर परस्पर का बिहार वन है, वहां पर उपस्थित थे और वहां पर हा कृष्ण कहते हुए जमुना में कुछ बने और इसके बाद में किसी ने उनको देखा नहीं। इसके बाद में किंतु ये इस कल्प की बात नहीं है, ये दूसरे इस कल्प में कृष्ण द्वारका से आकर के और सब गोपियों को अपने साथ लेकर के गोलोक वृंदावन में गए। ये पहले एक कल्प की बात, तो उसमें ललित माधव वाला वो राधा जी विरह में डूब करके और उसमें कूद गई जमुना में। विशाखा जी यमुना है, विशाखा भी उनके साथ हैं और दोनों, विशाखा के पिताजी कौन हैं? सूर्य। यमुना जी है ना, वो अपने पिता के घर में चली गई और राधिका जी को अपने साथ में ले गई साथ में वहीं पर, और वहां से नौ वृंदावन में द्वारका में पहुंची ललित माधव, जिसका श्रवण करके रघुनाथ दास गोस्वामी हाय हाय करके रोते 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 उस पुस्तक को छोड़ते नहीं थे। ललित माधव रघुनाथ रूप गोस्वामी ने देखा जैसे ये तो पुस्तक ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक और पुस्तक लिखी दान के लिए कौमुदी और लिख करके उनको दिया। पहले हाथ की ही पुस्तकें लगती थी और आंसुओं से वो भीज करके वो पुस्तक भी धुल रही थी ललित माधव वाली। इसको दिया का ये पहले इसको पढ़ लो और हमको उसमें दो चार शब्द लिखने हैं, तब तक लिए लौटा दो। बस उनसे मांग लिया और मांग करके छल बाल से ले गई। ये तबीरा में डूबता डूबता मर जाएगा। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी की बड़ी चिंता रहे कि ये मर ना जाए तो साधन भजन नहीं होगा, इसलिए वो लोग सब समय इनका देखभाल करते थे। बाघ आ गया उनके घाट से पानी पी रहा है, का जी अच्छा कुटी बना दिया आपने, आपका जी मेरी शपथ है तो ये इसमें रहो, सब समय देखभाल कर। शरीर साधन भजन के लिए एक साधन भगवान का दिया हुआ मंदिर है, यदि हम लोग बीच ही में छोड़ देना तो फिर भजन साधन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए शरीर को भी साथ साथ में कुछ देखना होगा। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी के समान हो जाएंगे, जब शरीर चिन्मय हो जाएगा तब तक कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं, किंतु जब तक साधन भजन करना है ऐसा संग मिल करके भी, और यदि शरीर चला गया तो फिर साधन भजन नहीं हो। इसलिए रूप सनातन जी रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़े पुत्र और छोटे भाई और शिष्य की तरह में पालन पोषण करते हुए उनको ये सब शिक्षा देते। तो वो ललित माधव नाटक बहुत ही करुण रस का है, तो उस समय में जब डूब करके चली गई ऊपर, तो कृष्ण से नौ वृंदावन में जाकर के मिली सत्यभामा के रूप में, इतनी सुंदरी इतनी मधुर स्वभाव वाली, कुछ बाम्य भाव वाली, मधु स्नेह का कुछ आभास उनमें कि राधिका जी से उनकी तुलना होती थी, इसीलिए उन्हीं से विवाह किया था जो राधिका की स्मृति बनी रहे, नहीं तो वो विवाह शादी कुछ नहीं करते। तो उस समय में एक दिन रुक्मिणी जी ने उनको देखा, सत्यभामा जी को, सत्यभामा ने वही राधिका जी, और देख करके कुछ इनको बड़ा ऐसा लगा यदि कृष्ण को ये मिल जाएगी तो कृष्ण हमको आदर नहीं करेंगे, इसलिए वो ना चाहती थी कि कृष्ण से ये मिले, इसलिए उसको बुला करके अब बड़े प्यार से उसको रख दिया। कैसे रखा? आबद्ध करके घर, इसको पता ना चले और कृष्ण से मिलने न दे, यदि मिल जाएगी तो फिर कृष्ण हमको भूल जाएंगे, इसलिए उनके अंदर में ऐसी भावना हुई। कह जो आप प्राकृत जगत में भी ऐसी भावना होती है, उसी की छाया जगत की भावना है, वहां पर शुद्ध होता है, यहाँ पर विकृत विकृत होता है, तो वो मिलना नहीं देना चाहती। किंतु काज ने कैसे उस सखियों की सहायता से और उनसे कहीं भेंट हो गई, और कृष्ण मधुमंगल और वहां पर और दूसरे लोगों की सहायता से राधिका जी से उनका कुछ संयोग थोड़ा सा स्थापित, और अंत में जब इन्होंने कठोर शासन किया, रुक्मिणी जी ने दर्शन नहीं करने देंगे तो उन्होंने कहा जी तब तुम अपने प्राणों को छोड़ देंगे, इसलिए समुद्र के किनारे अर्थात यमुना के किनारे नव वृंदावन में उपस्थित हुई और हम डूब करके मर जाएंगे, जा रही हैं इतने में ऐसे उन्मादग्रस्त हो गई हैं। कृष्ण ने दोनों हाथों से उनको पकड़ लिया, वो समझती हैं ये काला सर्प है, हाथ भी बहुत ठंडा होते हैं, ये काला सर्प ठंडा होता है, तो वो समझ गई जैसे ये काला सर्प है, किंतु आज क्या जाने क्या भगवान हमारा उल्टा है जो हमें काट क्यों नहीं रहा, अभी काट लेता और मैं डूब जाती मर जाती धीरे धीरे, किंतु आज सांप भी आज ऐसे हो गए जो आज काट नहीं रहे। इतने में कृष्ण ने सामने से आकर के उनको दर्शन दिया, इसके बाद में रुक्मिणी भी इसको देख रही थी, वो भी बड़ी उदार हो गई और फिर पीछे से आकर के उनकी शादी। ये दो जो बातें हमने कही इसलिए कही कि राधा जी का कृष्ण से मिलने के लिए कुछ क्षेत्र गई और कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गमन का भी इसमें उल्लेख अंततः कुछ मिलता है, और इधर कहते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ करके जाते नहीं, और भागवत इत्यादि में राधा जी का द्वारका जाने का कोई उल्लेख नहीं, इसका सामंजस्य कैसे करें, तब तो ये गलत है ये ठीक है, इसके लिए कहते हैं जैसे कृष्ण के प्रकाश बहुत प्रकार के होते हैं, द्वारका वाले कृष्ण मथुरा वाले कृष्ण वृंदावन के कृष्ण ये अलग अलग हैं, ना? उसी तरह से राधा जी जो कुरुक्षेत्र में गई एक राधा और जो द्वारका में गई वो एक राधा, और वृंदावन में जो हैं ब्रज में वो एक, जो कृतिकानंदिनी अथवा विश्वानंदिनी जो राधिका जी हैं वो यथार्थ सब अंशों की अंशनी राधा जी, वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जा सकती, इसलिए कृष्ण भी कहीं नहीं जाएंगे। उनके दो प्रकाश होते हैं, एक होता है संजोगनी और एक होता है वियोगनी। संजोगनी कहते हैं कामा, कामा को संजोगनी, काम से मिलने वाली, और वियोगनी है बामा जो वियोग से। इसमें राधा जी जो कृतिका सुंदरी की लड़की हैं, विश्वानंद महाराज की लड़की हैं, और वो स्वयं हलादनी शक्ति की मूल हैं, वो कभी भी वृंदावन ब्रज को छोड़ करके नहीं जाए, इसलिए ये कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा, उनको पक्का बात है। किंतु एक स्थिति है वियोग की स्थिति में, अर्थात इस स्थिति में वियोगनी की स्थिति में यमुना में डूब गई, अब डूब करके फिर नौ वृंदावन में गई, और वहां केवल कृष्ण मुरलीधर श्याम सुंदर से ही उनको भेंट हुआ, जब उन्होंने हाथ से पकड़ा उस समय में द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में नहीं स्पर्श किया राधा जी का, वो तो श्याम सुंदर के रूप में ही उनको स्फूर्ति हुई, क्यों वहां पर भी भेंट भेंट कुछ नहीं, स्फूर्ति वहां पर होती है, उस प्रकार से ये स्फूर्ति हुई और श्याम सुंदर बंसीधारी मोर मुकुट के रूप में उनको, तो ये है वियोगिनी ना, ये वियोगिनी राधा जी है, कृष्ण से पीछे से द्वारका में मिलती है, किंतु स्वरूप से जो राधा जी हैं कृष्ण का, ये कभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए उनकी जो अपनी किंकरी होगी। किंतु वियोग में यदि ऐसा हो जाए, कभी पागल हो जाए, और पागल होने पर कोई भी मति की स्थिरता नहीं रहती, उस समय में ऐसा हो सकता है कि चले भी जाए, उसके लिए कहते हैं कि तब मैं चले जाऊंगा, अर्थात तो राधा से संबंध नहीं होगा उस स्थान को, और उस वेश से, उस किसी भी चीज से हमको कोई भी जरूरत नहीं है, राधा जी हमारी स्वामिनी है, राधा जी से ही हमारा संबंध है। इसी के लिए वो कह रहे हैं शक्ति संजोगिनी कामा बामा शक्ति वियोगिनी लादिनी कृपा पुत्री चैव राधा प्राण ब्रजे। ब्रज में राधा तीन प्रकार की हैं, एक संजोगिनी अर्थात कामा, बामा अर्थात योगिनी, और एक है कृपिता जी की पुत्री। मम प्राणेश्वर कृष्ण तत्व वृंदावनम क्वचित क्वचित नैव जाति इति जानाति कृति। कृतिका सुंदरी की लड़की जो है श्रीमती राधिका जी जानती हैं कि राधा जी वृंदावन को छोड़ करके कदापि कहीं नहीं जा सकते, उनको दृढ़ विश्वास, इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं यदि कभी उनको उन्मादग्रस्त हो गई, गौतम उन्मादई राधा स्फुरति हरिणा श्रेष्ट हृदय, कहते हैं कि यदि उन्मादवस्ता यदि ऐसा कभी संभव नहीं है, किंतु उन्माद में उनकी स्फूर्ति यदि हो, क्या स्फूर्ति, कृष्ण द्वारका है और हमारे बिना वो रह नहीं सकते, तो उसमें उन्माद अवस्था में उनकी स्फूर्ति होती है सोए सोए कि कृष्ण द्वारका है, हम भी द्वारका हैं, और वो मुझे आलिंगन कर रहे हैं, ये बस उनकी स्फूर्ति हो। उस समय में उनकी सेवा के लिए, राधा जी की सेवा के लिए बिना बुलाए तदाहम तत्रैव उद्धतम मति, उद्धत मति हो करके, पागल हो करके मैं भी पतामी ब्रजपुरा, तो मैं ब्रजपुर से पता गरुड़ की भांति उनसे भी तीव्र गति से द्वारका में मैं समुद्दीय स्वांताधिक गति खगेंद्राति जवा, गरुड़ से भी अधिक गति से मैं द्वारकापुरी में पहुंच करके उनकी सेवा के लिए व्यस्त हो जाऊंगा। इस तरह से ये प्रार्थना, ये अनादि कितना बजा, साढ़े छः
छठा,
आज यहीं तक रहे, आज रात अधिक हो जाएगी, अंधकार भी हो जाएगा, कल से फिर हम लोग इसको आरंभ करके समाप्त करने के बाद में, तब फिर हम लोग
भजन रहस्य।
और एक बात है, आज सभी लोग आए हुए हैं, हम लोग 9 तारीख को हमारे गुरु जी की व्यास पूजा होगी आविर्भाव तिथि, तो पहले तो यहीं पर करता था, किंतु वृंदावन से साधु वैष्णवों को आने में कुछ कष्ट होता है, इसलिए उन लोगों का भी ऐसा आग्रह है, जैसे आप यहाँ पर ताप का मठ ही है तो पहला दिन वहाँ पर करें, तो पहला दिन 9 तारीख को हम लोग वहाँ पर ये गुरु जी का वहीं पर उत्सव मनाएंगे, गुरु तत्व के संबंध में भी बतलाएंगे, और ये 9 तारीख को, और फिर 10 तारीख को हम लोग लौट आएंगे, 11 तारीख को हमारे गुरुजी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का यहाँ पर व्यास पूजा हम, जिसको अत्यंत अधिक असुविधा हो तो वो तो नहीं जा सकेंगे, नहीं तो बाकी सब लोग आप लोग वृंदावन में पधारेंगे, और वहीं पर खूब सुंदर रूप से उनका ये सब हम लोग पालन करेंगे, वहीं पर सब लोग साथ आएंगे, जिनको परिक्रमा देने की इच्छा होगी वो अपनी परिक्रमा भी दे आएंगे, और 11 तारीख को सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, यहाँ पर ही उनका व्यास पूजा हम लोग 3 दिन तक वंशा कल्प कर।
आयु सरस तिहारी
बन बिहार